अरे हाँ, आप नादिर खानी साहब के घर का नंबर मुझे कब देंगी?
शायद कल तक दे सकूं।
जिसका इम्कान बहुत कम है ना?
नहीं, बात यह है कि जब से मैंने तलाक ली उस वक्त से मुझे कुछ पता नहीं है उसका।
मोहतरमा, मुझे आप पर बहुत अफसोस है।
क्यों?
क्यों? क्यों को छोड़े, मेहमान नवाजी के लिए माँ का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, अगर नादिर खाने का एड्रेस मिले या बात करने की हिम्मत कर पाए तो इस पर फोन कर लीजिएगा।
जी,
खुदा हाफिज।
पुलिस वाला गया?
जी अम्मा।
क्यों आया था?
कोई अहम बात नहीं, कुछ नहीं।
तो फिर क्यों आया था?
नहीं मालूम।
किसका फोन था?
रॉन्ग नंबर था।
मफहम वाकई मर गया या कत्ल कर दिया गया?
अम्मा मुझे क्या पता।
तो फिर पुलिस यहाँ क्यों आई थी? हमसे क्या मतलब था उनका?
अम्मा जान मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम।
फिर तुम्हें क्या पता है?
कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी खबर नहीं, कुछ भी नहीं जानती।
जिंदगी में भी परेशान किया, मरने के बाद भी।
किसी ने उसे फोन पर धमकी दी है, मुझे यकीन है। हालांकि करम के घर से बाहर जाने से भी इसका ताल्लुक है।
यानी ये कहना चाहते हैं कि करम का काम है?
नहीं नहीं, ये उसके बस की बात नहीं है। राबता कर सकता है क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं मालूम कम वहाँ है। देखो वाकया कुछ यूं है, नादिर खानी मुफाखम को फोन करता है, दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि हम मुफाखम के बारे में कुछ ना जाने। नादिर खानी तो खुद ही नहीं है। रसाई, कल सुबह करम और महबूबा साहिबा दोनों को यहां ले आओ।
बहरहाल अशकान साहब, तो फिर आप कब तशरीफ लाएंगे? इंशाल्लाह। बाकी बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। उनका जनाजा कई दिन हुए यूं ही आपके इंतजार में पड़ा हुआ है। खुदा की कसम, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जनाजा नहीं देखा है। ना कोई उस पर रोने वाला, ना किसी ने सोग मनाया, ना फातिहा, ना दुरूद, ना मजलिसे तरहीम, ना कुरान खानी, ना कोई दुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, वो तो मैं करूंगा ही। नहीं नहीं, मैं खुद हूं, मैं घर की निगरानी कर रहा हूं, हर चीज देख रहा हूं। हाँ जी जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كيا تھا؟ तो توبہ استغفراللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع. स्विमिंग पूल में कौन है? किसने ये लाइटें ऑन की हैं? यहां कौन है? तुम कौन हो?
جی فرمائیے.
السلام علیکم امیر.
ارے واہ ندا صاحبہ، کیا حال ہے؟
ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟
ہمیشہ کی طرح.
میری یاد نہیں آتی.
مجھے تو نہیں، لیکن یہ پرندے یاد کر رہے ہیں.
تو پھر انہی کا بہانہ.
ہاں تو بہرحال یہ پرندے ہیں نا، ہم آپ کی طرح بے مروت نہیں ہیں.
چلو یہی صحیح، لیکن اکیلا نہ چھوڑنا.
تم پریشان نہ ہو، اکیلا نہیں چھوڑوں گا.
ہم آپ کی بہت یاد آتی ہے.
جانے دو یہ سب باتیں. اچھا مقدمے کا کیا ہوا؟
ان کے وکیل نے کچھ دستاویزات پیش کی ہیں، جج نے اس کی تحقیق کا حکم دیا ہے.
اچھا
ہاں،
تو پھر جلدی آ رہی ہو نا؟
صبح سویر کی فلائٹ لی ہے، لیکن گھر نہیں آ پاؤں گی.
क्यों?
क्योंकि 9:30 बजे हमीदान की फ्लाइट है।
क्या उसकी तारीख भी कल ही है?
हाँ, 11 बजे है, लेकिन शायद 1-2 दिन वहाँ कंपनी में रुकना पड़ेगा और अपने मुकिल के हक में उसे बंद कराना पड़ेगा।
अच्छा, तो फिर ऐसा है, कोई बात नहीं।
तुम सुबह एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते?
हरगिज नहीं।
अम्मी प्लीज, अगर हो सके तो जरूर आ जाओ।
जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नहीं,
8 बजे एयरपोर्ट पे मिलूंगी। देखो फोन की बैटरी खत्म हो रही है। सुबह मुलाकात होगी, समझे? खुदाहाफिज़।
मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, खुदाहाफिज़।
कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सो तो नहीं रहे थे?
कुछ पता है तुम कहाँ हो?
यहीं अतराफ में।
अपने बाल बच्चों की तरह क्यों नहीं दी?
कुछ दिन तक चुपना जरूरी था।
कुछ सुना? मुफ़ख़्म मर गया?
हाँ, इसी सिलसिले में तुमसे काम था।
मुझे भी तुमसे बहुत काम है। इस वक्त कहाँ हो?
एड्रेस लिखो और चल पड़ो।
इसी वक्त?
हाँ, कोई मुश्किल है क्या?
नहीं, इत्तेफाक से इसी वक्त बेहतर है। एड्रेस बताओ।
नौबहार रोड, कुचई पीचक, ब्लॉक नंबर 24।
आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ।
बहुत बेहतर, खुदा हाफिज।
टेलीफोन बंद कर दो।
मुझसे मतलब नहीं, लेकिन खराब खेल शुरू कर रहे हो।
ये खेल तुम लोगों ने शुरू किया, हम तो अब खत्म करना चाहते हैं, बस।
समझते हो उन अफराद को पकड़ कर और उन्हें टॉर्चर करके मंशियात का मसला हल हो जाएगा? तुम हमें समझते क्या हो? यकीन करो, इस खेल में हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो ऐसा सांप है कि जिसके 100 सर हैं और 1000 दांव पेच। वो माफिया है, हर जगह है और कहीं नहीं है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे काम का कोई फायदा नहीं।
सुनो, इधर देखो क्या कह रहा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजारी है। मैंने छोटे बड़े पौधों से लेकर 500 साल तक के पेड़ों को देखा है, किसी को काटने नहीं दिया। जानवरों की जान की भी हिफाजत की है मैंने, उनका खून नहीं बहने दिया। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मुट्ठी भर तबाहकार और स्मगलर इंसानों की जान से खिलवाड़ करें, ये सरजमीन के नौजवानों की जिंदगी तबाह और नस्लों को बर्बाद करें। उन्हें खत्म करके दम लूंगा, खत्म करके दम लूंगा।
आप लोग जज्बाती हो गए हैं। आपको पता नहीं कि खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा रहे हैं।
जरा इधर सुने मोहतरम, मैं और मेरे शौहर अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो रहे थे, उसकी मौत पर नहीं। मौत तो बरहक है, उसी ने दी है, वही लेगा। लेकिन हम इस वजह से पागल हो रहे थे कि जानते थे कि तुम जैसे कमीनों और पस फितरत इंसानों ने हमारे बच्चे को नशेड़ी बना दिया। और फिर जब उन्हें पता चला कि उसका चचा पुलिस है, तो उससे जहरीला इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर देते हैं। क्यों?
मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, यकीन करें कि मेरी रूह को भी इस वाकये का पता नहीं। अगर मुफ़ख़्म ने ये किया होगा तो वो भुगत चुका।
लेकिन तुमने, तुम्हें तो अभी अपने किए की सजा नहीं मिली।
इस मसले में मेरा कोई कसूर नहीं है।
میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں نے مجید کو مفخم سے ملوایا، یہی۔
کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ معمولی گناہ ہے؟ ارے تم تو جانتے تھے کہ مفخم لوگوں کے بچوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔
مجید کو اسے انگریزی سکھانا تھی، خود جذباتی تھا، خود ہی کمزور تھا، مجھ سے کیا، مفخم سے کیا مطلب؟ کیا کوئی کسی کو زبردستی نشیڑی بنا سکتا ہے؟
زبردستی تو نہیں، لیکن دوستی اور چرب زبانی سے بنا سکتا ہے نا۔
اچھا میری ایک بات کا جواب دیں، مفخم صاحب کیوں مجید کو قتل کرنا چاہتا تھا؟
اس لیے کہ مجید سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنا کمینہ ہے، وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجید مفخم کی بہت سی باتیں جانتا تھا اور مفخم سمجھ چکا تھا کہ مجید کا اپنے چچا سے کتنا گہرا رابطہ ہے، اور پھر مجید کو جس نے نشیڑی بنایا تھا اس کا چچا اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ آپ سمجھ میں آیا؟
نہیں پتا، لیکن آپ یہ کہاں سے جانتے ہیں؟
مجید کی ڈائری سے پتا چلا۔
اچھا تو اس میں پھر لکھا ہونا ہوں، اور وہ تو مجھے بہت چاہتا تھا۔
بہت۔
وہ آپ ہی کو اپنی تمام پریشانیوں کی جڑ سمجھتا تھا۔
مجھے؟
جی آپ کو۔
اچھا میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟
اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ تم اپنا قرض کیسے اتارنا چاہو گے۔
میں نے تو آپ کو مفخم کا نام بتا دیا، یہ کافی نہیں ہے؟ بہزاد بھی راستے میں ہے، وہ اس سلسلے میں باثر آدمی ہے۔
نہیں اتنا کافی نہیں ہے، تمہیں اوپر والوں کا نام بھی مجھے بتانا ہوگا، بالکل اصلی لوگوں کا، اصلی، سمجھے؟
بہزاد کوئی معمولی نہیں ہے۔
شاید ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔
بہت شکریہ، شب بخیر۔
کون ہے؟
معاف کرنا، بہزاد ہوں۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
آئیے آئیے۔
معاف کیجیے گا، نادر صاحب یہاں ہیں؟
جی ہاں۔
اجازت ہے میں اندر آؤں؟ شکریہ، میں دروازہ بند کر دوں گا، معافی چاہتا ہوں۔
کوئی بات نہیں، اندر آئیے۔
کس طرف سے؟ میں حاضر ہوں، رات کے وقت ڈسٹرب کرنے پر شرمندہ ہوں۔
کوئی بات نہیں،
نادر یہاں ہے؟ اوفو، اجازت ہے؟ اجازت دیں گے؟ ارے نادر کیا ہوا؟
اپنی جگہ سے ہلنا
ہوا، میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ ارے میری غلطی تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟
آئی میری گردن، آئی
आए, ये सब किसने कर दिया? यहां कौन आया है? कौन यहां पर है? चोर, चोर। मैंने कहा कौन है? साहब का ये प्याला किसने तोड़ा है? ये एंटीक है। हाय करम, तेरा नसीब फूट गया। साहब ने 28 साल तुम्हें पाला और तुम 28 दिन भी उनके सामान की हिफाजत नहीं कर सके। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम बर्बाद हो जाओ करम। कौन है? दरवाजे के पीछे कौन है? वही हैं, चोर हैं। अपने पैरों से चल कर आए। अच्छा तो अपने पैरों से आए हो ना? तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मेरा नाम करम नहीं आकर तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दी तो। आओ, तुम लोग साहब का प्याला तोड़ते हो, मैं भी तुम्हारे प्याले तोड़ दूंगा। आओ। साहब आपको खुदा ने भेजा है मेरी मदद के लिए। वल्लाह
क्या हुआ? ये क्या हाथ में है?
ये डंडा है। बहुत लंबा किस्सा है।
हुसैन जाओ, गाड़ी का दरवाजा बंद करके आओ। जाओ जल्दी आना, समझे? अच्छा बताओ,
रात को मैं अशकान से बात कर रहा था।
मुफाखम के बेटे?
फोन पर अशकान से।
अच्छा,
फिर मैंने देखा कि एक आवाज आ रही है, तो मैंने जाकर देखा कि ग्लोब जल रहे हैं।
ग्लोब
वही शीशे में रोशनी, बल्ब है,
लैंप
बल्ब जल रहे हैं। फिर मैं स्विमिंग पूल की तरफ गया तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मैं गया तो
हेलो।
ये हाँ,
क्या बात हो गई?
बहुत शुक्रिया आपका।
एक मिनट, नेता।
आप कहाँ जा रहे हैं?
एक मिनट, माफ कीजिए।
देर कर दी तुमने।
अब देखो सड़क
मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ।
अरे भाई अभी खुदा हाफिज, कितने जल्दी?
हाँ मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई।
एक मिनट, कम से कम।
थैंक यू, लेकिन ये जानने के लिए तुमसे बहुत नाराज हूँ।
ठीक है, मैं नहीं नाराज हूँ। खुदा हाफिज। फोन करने का यही वक्त मिला था ना? खैर छोड़ो। अच्छा अब शुरू से बताओ बात क्या है? करमिया, तुम्हें यकीन है? अच्छी बात है। नहीं करम साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चोर रहे होंगे।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे झूठ बोला?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने। अच्छा अगर वो चोर होते तो घर का कोई सामान जरूर ले जाते है ना?
जी।
तो नहीं ले गए? नहीं ले गए क्योंकि उन्हें किसी अहम चीज की तलाश थी, किसी कीमती चीज की तलाश थी। अब वो कौन सी चीज थी सिर्फ खुदा जानता है।
शाबाश, ऐसा ही है साहब, ऐसा ही है, ऐसा ही है साहब, आप खूब समझे। शाबाश शाबाश।
ये कोई पेचीदा बात
नहीं साहब, पेचीदा बात थी।
करम मियां, मुफखम साहब का बेटा ईरान कब आ रहा है?
वल्ला कह रहा था कि कल, यानी आज टिकट के लिए जाएगा और फिर ईरान आने वाले पहले जहाज से ईरान आएगा।
क्या किया जा सकता है, हम इंतजार करेंगे। ये लो।
आपका बहुत शुक्रिया।
अच्छा देखो, अगर बेटे के आने में देर हुई तो मुझे मजबूरन किसी को घर भेजना पड़ेगा सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए। अगर चाहना तो तुम खुद ही साइन कर देना, और नहीं तो फिर बहरहाल बेटे का इंतजार करेंगे।
खुदा की कसम मुझे बहुत तकलीफ हुई, उस घर में 28 साल तक खिदमत करने के बाद भला कैसे मैं जिम्मेदारी कबूल ना करूं और चला जाऊं सिर्फ 5 दिनों की वजह से। मैं रुक जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, अगर किसी ने साहब के सामान की तरफ देखा भी तो मैं उसकी आंखें निकाल के रख दूंगा। मैं हरगिज़ नहीं सोऊंगा, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े, मैं किसी को साहब के सामान को हाथ नहीं लगाने दूंगा।
ठीक है, नाराज ना हो, जैसा चाहो ऐसा करो। बहरहाल वो काम जरूरी है, मैं किसी को भेज दूंगा। और अब बारी है असली बात की, मगर इस शर्त के साथ के सच बोलोगे।
हाँ सच, वल्ला साहब मैंने कभी झूठ नहीं बोला है।
ठीक है। अच्छा करम ये बताओ, जब कल हम लोग महबूबा साहिबा के घर गए थे तो क्या किसी और को भी इसका इल्म था?
सच मुझे नहीं पता कि कोई जानता है।
हाँ गौर से मेरी बात सुनो, कल जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वापस तक मेरा इंतजार करो, तो तुमने किसी से फोन पर या यूं ही कोई बातचीत की थी किसी और से?
बातचीत या खैरियत तो नहीं, लेकिन फोन किया था।
किसे?
जलाल साहब को।
जलाल कौन है, उनका फैमिली नेम क्या है?
वल्ला मैं उसका फैमिली नेम नहीं जानता। जलाल साहब जलाल साहब के दोस्त हैं, मुफखम साहब के पुराने दोस्त।
उनसे किस सिलसिले में बात की?
मैंने कहा कि ओए नमक हराम, तुमने एक उम्र साहब के लुकमे तोड़े, खाया पिया, और अब उनका जनाजा कई दिनों से पड़ा है और तुम एक मजलिस फातिहा नजर के भी रवादार नहीं हो, ये कहा।
अच्छा ठीक है, तुमने महबूबा साहब के बारे में तो कुछ नहीं कहा था?
नहीं नहीं, सिर्फ
सिर्फ क्या?
मैंने सिर्फ ये कहा कि ये महबूबा साहिबा फिर साहब के पीठ पीछे बातें कर रही हैं।
ओफो। अच्छा ठीक है, अब तुम जलाल का नंबर मुझे दे दो।
जी अभी फौरन। लगता है कि भूल गया हूं।
क्या नंबर याद नहीं है?
अरे साहब आजकल इतना होशो हवास कहां जो नंबर याद करूं, जरूर घर में गिर गया है या स्विमिंग पूल के किनारे, ढूंढ लूंगा।
और घर, घर जानते हो?
नहीं साहब खुदा की कसम नहीं। और फिर साहब भी हमेशा कहते थे कि किसी के काम में दखल ना दिया करो, टो में ना रहो। और फिर जलाल साहब के नंबर की लंबी कहानी है। कहानी यह है कि एक दिन घर का फोन कटा हुआ था, साहब भी बीमार थे, उन्होंने जलाल साहब का नंबर मेरी डायरी में लिख दिया और कहा कि बाहर टेलीफोन बूथ से जाकर फोन करो, कहो कि मैंने बुलाया है। इस बिना पर जलाल साहब का नंबर मेरी डायरी में रह गया, इस तरह रह गया।
बहुत बेहतर है। अच्छा देखो, घर पहुंचना तो जलाल साहब का नंबर नोट करके फौरन मुझे फोन करना, और अगर अगर उसने तुम्हें फोन किया या तुम उसे फोन करो तो ये बिल्कुल ना बताना कि मेरी तुमसे कोई बात हुई है या मतलब फोन वगैरह के सिलसिले में, समझ गए ना?
हाँ हाँ समझ गया, उनसे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। आप यकीन करें कि मैं फोन करूंगा और उनका नंबर आपको दे दूंगा।
बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा एक सवाल और, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मुफ़ख़्म साहब गैर कानूनी काम करते थे?
हाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुफ़ख़्म साहब और खिलाफ कानून? हरगिज नहीं। मुफ़ख़्म साहब खुद हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि खिलाफ कानून कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, बाहर निकाल दूंगा, सबसे कहते थे।
ठीक है, तुम जा सकते हो।
बहुत शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। जरा रुको करम।
जी साहब।
मुझे जलाल साहब का नंबर जरूर चाहिए, समझे?
जरूर साहब, मैं पहुंचते ही जरूर उसको ढूंढूंगा और आपको फोन कर दूंगा।
शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ जरा तुम रुको, मैं एक हवलदार को भेज देता हूँ, तुम्हारे साथ सामान की लिस्ट भी तैयार कर ले और तुम्हें दे देगा, ठीक है? उसे अपने पास रखना।
जी।
ध्यान रखना, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जी मैं पूरी तरह होशियार हूँ।
बहुत अच्छी बात,
आपका चाय पिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे भाई तुमने तो चाय पी ही नहीं।
नहीं नियत शर्त है साहब। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अमीर हूँ।
वालेकुम अस्सलाम अमीर, कैसे हैं आप? ठीक हो ना? निदा कैसी है, ठीक है?
बस ठीक ही है, सलाम कह रही थी। भाई का क्या हाल है?
उनके सर में दर्द हो रहा था, सो रहे हैं, कहें तो बुला दूं? शुक्रिया। नहीं नहीं रहने दें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अच्छा पकड़ में आए तुम, चलो निकलो यहां से वरना इसी तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गो
ला।
अरे खराम, क्या बात है? शोर और गुल क्यों मचा रखा है? अपना खून गंदा ना करो, ये हमारे आदमी हैं। अच्छा तुम लोग अपना काम करो।
आप अंदर कैसे आए साहब?
हम दरवाजे से, दीवार से, छत से, कहीं से भी आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता?
अरे साहब, क्या मैं मर गया था? आपने कहा होता तो मैं आकर दरवाजा खोल देता, आपको इतनी तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ती। ये सब अमानत है, ये सब साहब का सामान है, ये सब सही और सालिम अशकान साहब के हवाले करना
देखो,
है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है करम, कोई बात नहीं। तुम क्यों खुद को परेशान करते हो? देखो मैं एक ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ कि अगर तुम मेरी मदद करो तो आसानी से मिल जाएगी, समझे?
अच्छा क्या है?
एक खुफिया जगह।
खुफिया जगह? खुफिया जगह?
करम देखो, अब तुम अनजान मत बनो। देखो मैंने और मुफ़क्कम ने 2 हफ्ते पहले एक चीज खरीदी थी। मुफ़क्कम को उसे खुफिया जगह छिपा कर रखना था जब तक कि उसका कोई खरीदार नहीं मिल जाता। अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इस माल को यहाँ से हटाना है, खत्म करना है, इसका कुछ ना कुछ करना है, वरना हम सब फंस जाएंगे।
कौन सी चीज?
तुम जैसे ही खुफिया जगह का पता बताओगे समझ जाओगे।
तो मुझे बताओ कि क्या चाहिए, कैसी है, कहाँ है, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं। इस तरह नहीं होगा, मेरे सर में दर्द होने लगा है। बेहतर यही है कि तुम अपने लोगों के साथ यहां से वापस चले जाओ, वरना मैं भी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूं।
करम तुम तजर्बेकार आदमी हो, तुम्हारे मुंह से ना तजर्बेकारी की बात अच्छी नहीं लगती।
मुझसे अभी अभी कहा गया है कि मुझ पर एतमाद है और साहब के घर के सामान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है, और फिर इस पर अंगूठा भी लगाना है मुझे, और जब तक अशकान साहब नहीं आ जाते, आप सबके हक में यही बेहतर है कि इन लोगों को लेकर यहाँ से चलते बने, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब जानते हैं कि मैंने कल आपसे फ़ोन पर बात की थी, और अब मुझे फ़ोन करके इंस्पेक्टर साहब को आपका फ़ोन नंबर उनको बताना है। हाँ,
तुमने वो कल ही क्यों नहीं दे दिया?
हाँ हाँ, उस वक्त मेरी डायरी मेरे पास नहीं थी।
तुम्हारी डायरी? ये नहीं है?
हाँ हाँ, यही है। लेकिन मेरी डायरी आपके पास क्या कर रही है?
कल रात हौज के किनारे कुछ याद आया।
अच्छा, तो नमक हरामो तुम थे जिन्होंने मेरे सर पर डंडा मारा था। मुझे मार डालते, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते तो खैर थी, लेकिन तुम लोग जो उमर भर साहब के घर पर आकर डेरा डालते थे, उनके लुकमे तोड़ते थे, उनका नमक खाते थे, अल्लाह करे तुम्हारे हलक से नीचे ना उतरे। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुदा करे तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुम्हारे पैर टूट जाए, और फिर मैं किसके लिए काम ना करता सिवाय मुफ़क्कम साहब के, कि जो तुम्हारा भी रोजी रोटी का खर्च देते थे।
शाबाश, तुम मेरे साथ अपने मालिक की नेकियां तो जानती हो, लेकिन खुफिया जगह तुम्हें नहीं मालूम।
साहब तो सभी के साथ नेकी करते थे।
सच है, तुम सही कहते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वो इस वक्त हमारे दरमियान में नहीं है, उनकी रूह को तकलीफ होगी। करम देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह जहां ये ना सुने। लाओ ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो।
बस ऐसे ही। आइए। माफ कीजिए जलाल साहब, आपको चप्पल पहन लेनी चाहिए।
कोई बात नहीं,
अगर स्विमिंग करना चाहते हैं तो पानी तैयार है।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
जी कहिए, बैठिए।
बैठो।
मैं बैठूं?
बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कान खोल कर मेरी बात सुनो करम, मैं क्या कह रहा हूं सिर्फ गौर से सुनो।
जी अच्छा।
देखो करम, मैं और मुफ़क्कम बरसों से एक साथ काम करते थे, बरसा बरस, एक दो दिन की बात नहीं थी। और किसी को उसकी खबर भी नहीं थी, हत्ता तुम भी नहीं जानते थे।
जी नहीं, मैं तो जानता था कि आप साहब के साथ कई बरसों से काम कर रहे हैं,
लेकिन ये नहीं जानते थे कि हम क्या करते हैं।
क्यों नहीं, वो भी जानता था। आपको पता है कि 28 साल और कुछ महीने मैं मुफखम साहब के पास रहा हूं, और इस दौरान साहब ने कोई भी काम मेरे मशवरे के बगैर नहीं किया है।
अपने गैर कानूनी काम भी?
गैर कानूनी? बेहतर नहीं, ये इल्जामात मेरे साहब के लिए सही नहीं है।
क्यों
नहीं?
क्यों नहीं? गैर कानूनी काम करता था और खूब करता था।
गैर कानूनी? अच्छा बताइए, मसलन कौन सा गैर कानूनी काम करते थे? हाँ, आप तो कह रहे थे गैर कानूनी कि मैं तो डर ही गया था। आप तो उनसे भी बड़े कानून शिकन हैं। इसकी वजह से तो 16 जगहों पर मेरे हाथ जल गए, इतना आपके लिए कोयला जलाए, फिर भी आप कहते थे कि इन्हें तब्दील करो।
मेरा मतलब ये नहीं था, तुम मेरी बात नहीं समझे करम।
आपने तो करम की जान ही ले ली है, आपने तो कब्र में मुर्दे को तड़पा कर रख दिया है। आखिरी बात बताएं जलाल साहब।
तो तुम कुछ नहीं जानते?
आखिर मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम, रसूल की कसम और उसकी कसम जिस पर तुम ईमान रखते हो, अगर मैं कुछ जानता तो बस इतना कि इन 28 साल 3 महीनों में जब तक मैं साहब का नौकर रहा हूं, इस जालिम और नाइंसाफ दुनिया में वो मेरे लिए भाई की तरह थे। अब मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं।
करम, मेरे सामने ड्रामा मत करो, सिर्फ इतना बताओ मनुष्यात कहां छिपाई है।
हे मनुष्यात क्या है जलाल साहब, आप सही बताएं तो मनुष्यात क्या है, तब मैं आप साफ बताएं तो सुने। सुबह से अब तक फुलवारियों को पानी तक नहीं देने दिया मुझे।
200 किलो मॉर्फिन, 400 किलो तरियाक।
हाँ, 200 किलो।
हाँ, ये बात तुम्हारी खोपड़ी में फंसने वाली नहीं है और तुम्हारी समझ में आना भी नहीं चाहिए, और ये मुमकिन नहीं कि तुम न जानते हो कहाँ छिपाई है।
हाँ, अच्छा जलाल साहब, लगता है कि आप नींद में थे और ख्वाब देखा है। हाँ हाँ, नींद में थे और फिर ख्वाब देखा 200 किलो।
करम, ये मनुष्यात दूसरे लोगों के हाथ नहीं लगने चाहिए इससे पहले कि मैं इसको बर्बाद कर दूं या कहीं छुपा दूं। वो तो मर गए, तुम और हम खतरे में हैं। करम, तुम्हें कसम है, मुझे बता दो कि मनुष्यात कहाँ रखी गई है, तुम जानते हो। तुम नहीं जानते? झूठ तो नहीं बोल रहे
We'll be right back.